تو اپنی گونٹھوں پر یہ کمکم کا رنگ کہاں سے لے آیا؟ کیوں لایا؟ وہ بھن بھن کر رہا ہے بھونرا. سامنی جی آپ ایسا ہمارا الزام مت لگائیے. میں تو اپنے پربھو جی سے آدیش پا کر کے آپ لوگوں کی چرنوں کی سیوا کے لیے آئے ہیں, تمہیں منانے کے لیے آئے ہیں. ہم نے اپنے گلفوں پر کمکم اتیادی کہاں سے پاؤں گا جو لگاؤں؟ ارے تو نہیں جانتا ہے, میں بتلاؤں یہ کہاں سے لے آیا. ہماری سونتے جو وہاں پر ہیں متھرا میں, کون سونتے؟ ارے اور نہیں ہے تو کبڑی تو ہوگی ہی. کبڑی کبڑی نا خوب جا میں نے کبڑی تو ملی ہی. بھونرے جب پاگل ہو جاتے ہیں تو ان کو گیان نہیں رہتا جی یہ کند کا پھول ہے نہ کس چیز کا پھول ہے. گندے پھولوں پر بھی وہ کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہے. تو ویسی پریائیں سندری نہیں ہونے پر خوب جادی تو ان کی ہی ہے. شاید کرشن سے ملی ہو اور ملنے کے بعد میں کرشن ان کے انگوں کا کمکم کرشن کے بلمالا میں لگ گیا ہو اور اس بلمالے پر تم بیٹھا ہو اور اس بیٹھنے سے تمہارے انگوں میں یا تمہارے گوفوں میں یہ کمکم لگا. خبردار یہاں سے جلدی سے اپوت ہو کر کے اٹھ جا. ہم کو تم منانے گا یا ہمارے کروپ کو اور بھی ادھک وردھی کر دے گا. دیکھو کرشنا بھی جدو سبھاؤں میں جاتے ہیں تو تم ہماری سبھا میں آیا تو ہم آسانی سے سمجھ گئیں کہ بنا استریوں کے تو ان کا ایک دن بھی نہیں چل سکتا, ایک سیکنڈ بھی نہیں چل سکتا. اور یہ بات جدی جدو میں معلوم ہو جائے جدو لوگ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے, ان کا بڑا گھور اپمان کریں گے. تو جیسا دودھ ہے ویسا ہی اس کا پربھو ہے. سکرتا دھار اتیادی شلوکوں کا انہوں نے بتلایا. میں دو ایک شلوک کا ایک شلوک کا ماتر سنکھیپ میں بتلا کر کے اپنا وکتویہ سماپت کرتا ہوں کہ رات ہو گئی. کل جدی ہوگا تو کچھ سویرے کی طرف یا شام کی طرف میں بتلاؤں. مرگیوریو کپندرم دپ دے دھوک. ارے دو گوپیاں کا کہ تو یہاں سے چلے جا, میں لکشمی نہیں ہوں جو بھولی بھاتوں باتوں سے اس کی میں تمہاری باتوں پر وشواس کر لوں گی, یہ ہم لوگ نہیں کر سکتی ہوں. تو چلے جا اسی کے یہاں. دیکھو سنا ہے گرگ رشی سے اور سنا ہے پورنیماسی جی سے جی یہ پرتیک کچھ کچھ جنم لیتا ہے اس میں یہ کالا ہی ہوتا ہے, اپنا دودھ بھی کالا بھیجا ہے. اس لیے کرشن نہیں کہہ رہے ہیں, کرشن نام اچارن اس سمے نہیں کر رہی رادھکا جی, بس کالا کالا کر رہے ہیں. ایک کالا ستجگ میں آیا تھا بامن ساروپ دھارن کر, اس نے سربست دینے والے بلی مہاراج جی کے ہاں گیا اور کپڑتا سے ان کے راج مانگ لیے. تین ہاتھ زمین لینے کی بات تھی تین پر, اور اس نے لیتے سمے اپنا پیر اتنا بھی استعمال کیا پھر وہ سہ مہاجن تپ اتیادی سب ایک پیر میں لے لیا, دوسرے پیر میں اس چھور سے یہاں تک برہمانڈ تک لے لیا, اور تیسرے پیر میں پیر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں. تب اس نے انہیں کو ماپ لیا, انہوں نے اپنے کو سروسو دے دیا اور تبھی ان کو پکڑ کر کے باندھ دیا. ایک تریتا جگ میں آیا کالا, وہ پتا ماتا کے آدیش سے بن میں گیا, اپنی پتا مات آدیش سے وہ بن میں تو گیا سنیاسیوں جیسا تپسیوں جیسا بیش بنا کر, وہاں پر اپنی استری کو بھی لے گیا. وہ کہتا ہے کہ میں جیتندری ہوں کہ کوئی بھی استری مگدھ ہو جاتی ہے. راون کی بہن سورپنکھا اتنت سندر روپ بنا کر کے ان کے پاس میں آئی, اور اس سمے میں اسی کالے نے اس کی بات نہیں سنی. ارے پڑے کی بھکشا مانگ رہی تھی, کون سی غلطی کی اس نے؟ تمہارا روپ کا دوست تھا جی, اتنا سندر روپ بنا کر کے آیا, اور جدی کوئی تمہارے روپ میں مگدھ ہو کر کے پڑے کی بھیک مانگ رہا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی تو تمہاری ہے کہ تم نے ایسا روپ کیوں بنایا, میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے ہنسایا, اور ہنسا کیوں, ہنسی مذاق کیوں؟ اس نے اس کے لیے اس کی ناک کان کاٹ لی کہ آج اب سے اسی سے کے ساتھ میں کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس کا جیون ہی برباد کر دیا. सीता के बाद से सीता के लिए, क्यों? वो स्त्री कामी है। उस जन्म में भी सीता ने कहा कि इस हिरण को ले आओ मारकर, सोने के हिरण। क्या जरूरत थी? नहीं, सीता जी ने कहा यदि जीवित पकड़ा जाए तो कैकई को उपहार दूंगी, भरत भैया को उपहार दूंगी, और यदि नहीं हुआ तो मार करके भी ले आओ तो मृगछला बनकर ले जाएंगे और वो भी भरत भैया को देंगे या कैकई मैया को उपहार देंगे। क्या जरूरत है उसके पीछे पीछे जाने का? लक्ष्मण जी ने मना किया, उसने माना नहीं। तो उसने जो बांदर है, बंदर को भी लोग नहीं मारते, उस बाली को उस काले ने मारा। किसने मारा? उसने कहा जब तुम्हारी स्त्री को मैं लौटा लाऊंगा, और उसने प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हारी स्त्री को लाएंगे। स्त्री के लिए दोनों में मिताली हुई, दोनों भी स्त्राइण, और कहते हैं कि हम दोनों जितेंद्रीय महापुरुष। राम ने बाली को क्यों मारा? बाली ने कहा कि हमको कौंतुब ने मारा, यदि तुम कहते तो मैं सीता समेत रावण को पकड़ करके यहां पर ले आता, तुम्हारे चरणों में दे देता। सुग्रीव क्या कर सकता है? किसने हमको मारा? मैंने तुम्हारा दोष क्या किया? हमारा मांस मनुष्य भी नहीं खाते, किसने मारा? राम के पास में इसका क्या उत्तर था? उन्होंने गोल मटोल बातें उन्होंने कर दी कि अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हें इनको दुखने से दोष होता इसलिए मैंने मारा, कहा किंतु उसका उत्तर नहीं दे सके। तो इनके साथ में हमारा सुलह संभावना नहीं है, इससे तुम जाओ। भ्रमर ने कहा गुनगुनाते हुए, मानो भाव नेत्र से देखा, भाव करने से सुना, तो तब उनकी बात क्यों करती हो? जब इसे सुलहनामा नहीं होगी और जिनको तुम प्यार नहीं करती तो फिर उनकी बातें क्यों सुनती हो? तो यही तो बात है, मैं उनके बातों को नहीं छोड़ सकती, उनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकती। जो एक बार जिनके कानों में कृष्ण नाम पहुंच जाता है, क्या है सके तो अनुचरित जद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रत, एक बार भी जिनके कानों में कृष्ण नाम पड़ जाता है, उनकी कथाएं पड़ जाती हैं, वो घर बार को छोड़ करके द्वंद धर्म, माता पिता को छोड़ देता है, अपनी स्त्री को छोड़ देता है, अपनी बहन को छोड़ देता है, बहन यदि सुनती है, पत्नी सुनती है तो अपने भाई को, अपने पति को, सबको छोड़ देती है, जैसे गोपियों ने छोड़ दिया। हमारी यह दुर्दशा, बहुत से लोग अभी भी वृंदावन में, लड़के ही केवल नहीं लड़कियां भी, विवाह शादी किए बिना घर को, माता पिता को, भाई बंधु को छोड़ करके दिन भर रोते रहते हैं, भिक्षा से किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते हैं, घर नहीं है, द्वार नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, और पक्षियों जैसा इधर उधर डोलते रहते हैं, उनका जीवन चर्चा ही ऐसा हो जाता है। इसलिए जो लोग सुन रहे हो, वो कृष्ण की किसी नाम को मत करना, उनकी कथाओं को नहीं सुनना, नहीं तो हमारी जैसे उनकी स्थिति हो जाएगी, गोपियां कह रही। तो आप लोग भी संभल बूझ करके, समझ सुन करके, उस धूर्त और छली कपटी का नाम आप लोग लेना, नहीं तो गोपियों जैसा बिल बिलाना होगा, गोपों जैसे बिल बिलाना होगा। कृष्ण गोपियां अंत में कहती हैं, ओहो हमने अभी तक तो तुम्हारा बड़ा निरादर किया, किंतु हमारे प्रियतम ने तुम्हें भेजा है, आओ आओ। अच्छा ये बतलाओ, ब्रज का समाचार ठीक है? वहां पर क्या कभी कृष्ण हम लोगों को कभी भूल से भी पूछते हैं जो गोपियां कैसी हैं, नंद बाबा कैसे हैं, उनके सखा कैसे हैं, पूछते हैं कभी भूल से भी? अरे कभी ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो फूल की माला तुमने बनाई है गोपियों जैसी सुंदर नहीं, इसमें इतना आर्ट नहीं है, या कभी ऐसा कहते हैं गोपियां ऐसा नहीं बना सकते, इसलिए तुच्छ ताच्छिल्य में भी हमें स्मरण करते हैं। कभी कोई चीज उनको सुंदर रूप से कोई चीज देता है, कहते हैं कि गोपियां ऐसी नहीं कर सकती, ऐसा भी करते हैं, भूल से भी कभी हमारा स्मरण क्या करते हैं, और ऐसे कहते हैं गदगद होकर के, हा कृष्ण कहती हुई मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उद्धव जी देखते रह गए। इसके बाद में उद्धव जी ने उनके लिए जो प्रार्थना की है, वंदे नंद ब्रज श्री नाम पादरेणुम अभिघ्नसा जासां हरि कथोद्गीत पुनाति भुवन त्रयम्, इस प्रकार से गोपियों की चरण की वंदना की। अब कल उसके संबंध में कहेंगे, आज अभी आरती होगी, और आरती के बाद में अन्नकूट का जो प्रसाद है, अन्नकूट का प्रसाद आप लोग सब लेकर के तब जाएंगे।
जिस प्रति पहले से ही वो अनुरक्त है बस उसी के साथ में अनुरक्त रहेगी। विवाह होने पर भी उसी के साथ कहीं कहीं पर नाट्य शास्त्र इत्यादि में ऐसा देखा जाता है। खराब होने पर भी ये चल सकता है। जैसे चंडीदास आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, नहीं जानते, एक भोबिल की लड़की थी और चंडीदास बड़े विद्वान संस्कृत के और ब्राह्मणपुर के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। बचपन में ही दोनों का प्रीति हो गया, इन्होंने भी शादी नहीं की, उसने भी शादी नहीं की और उसी के साथ में रह गए और भक्ति की पराकाष्ठा उन्होंने लिखी अपने ग्रंथों में, दोनों परम भक्ति। उसकी शादी हुई थी दूसरी जगह लड़की थी, किंतु उस पति के साथ में नहीं जाकर के अपने घाव नहीं रही और उनसे मिलती रही और भक्ति में डूबती रही, ये भी डूबते रहे। ये चंडीदास जी चैतन्य महाप्रभु के बनाए हुए पदों को सुनते हैं और बड़े उल्लसित होते हैं। तो शास्त्र में कहीं कहीं पर इस नायिका को कहीं ले लिया गया। और तीसरी वो है, उनकी शादी होने पर भी कोई दूसरा पुरुष नहीं, अपने पतियों से कोई संबंध नहीं, कृष्ण को ही अपना पति और अपना सर्वस्व मानकर प्रियतम मानकर के उनकी सेवा करने वाली है, ये यथार्थ में पति पिता है। जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी अहिल्या जी बाली की पति तारा, द्रौपदी जी उनकी तारा अहिल्या मंदोदरी और ये पांच ये जो स्त्रियां हैं इनको कन्या कहते हैं, इनको विवाहित भी नहीं मानते। रावण जैसा दुष्ट मंदोदरी का पिता पति था, किंतु वो कृष्ण को राम को ही अपना पति मानती थी, इसलिए वो कन्या में गई। द्रौपदी के पांच पति हैं, सभी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती है, उनकी उनके बेटे के समान है और उनको अपना प्रियतम समझती है। उनको भी पांच पति हैं, पांडु तो वही हैं, धर्मराज हैं, वायु हैं, इंद्र हैं, सभी उनको कन्या कहा गया। इसलिए कि कृष्ण में यदि भक्ति है और कृष्ण को ही सर्वस्व समझा जाए तो वो सबसे अधिक सुखी होता है। इसलिए हमारी शादी हो न हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, कृष्ण को अपना परम पति मान लेते हैं। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण की आराधना की और उनको ही अपना परम पति माना। देखो जगत में ब्रह्मा शंकर क्या कृष्ण चंद्र स्वयं भगवान होकर के पर ब्रह्म होकर के उनकी चरणों की सेवा। ये सब शिक्षाएं उद्धव जी को देखा और गोपियां प्रेम के बीच एकदम सीमा पर आरू है, ऐसा कहीं विश्व में भक्ति नहीं है। इसे श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है गोपियों का प्रेम और उसमें राधा जी का प्रेम और प्रतिपाद्य। इसलिए राधा जी को मनाने के लिए देखो कृष्ण रात पंच अध्याय इत्यादि में जिसमें उद्धव लौट करके जा रहे हैं, उद्धव जी ने कहा मैंने आकर के आपसे बतलाया कृष्ण आपके गृह में चढ़ा, मैं लौट करके उनको क्या कहूं। राधा जी कुछ नहीं बोले, जी जरा आप बतलाइए कि मैं कृष्ण से आपके लिए क्या संवाद दूं। उन्होंने कहा देखो तुमने कृष्ण को समझा नहीं, कृष्ण की भगवत्ता तो तुमने समझी, उनका प्रेम का हृदय तुमने नहीं समझा। वो मक्खन से भी कोमल है उनका हृदय, मक्खन हाथ में लेने से हाथ की गर्मी से पिघल जाता है, ये बात ठीक है, तो कृष्ण उसके नाम से ही पिघल जाते हैं। तुम जाकर के खबरदार ये मत करना ये गोपियों तुम्हारे सिर में बड़ी दुखी है, ये खबरदार है, नहीं तो तुम इसको सामने तक से मर जाएंगे। इसलिए तुम कृष्ण से कहना, देखो गोपियां बड़ी प्रसन्न है, उनको कोई कसर तुमको भूल चुकी है, तुम भूल सकते हो तो वो भी भूल सकती है, जैसे तुमको पूर्ण रूप से भूल गई है। अरे तुमको तो गाली देती है, चोट चोट टाकती है, तुमको दुख भी कहती है, तुमको लंपट भी कहती है, ऐसी गालियां देते हैं। ऐसे जाकर के कहना, हम उनका स्मरण नहीं करते, ऐसे कहना। फिर दूसरे दिन कुछ कहना, फिर तीसरे दिन कुछ कहना, धीरे 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 तब उनको बतलाना है जो गोपियां आपके अभिरह में है। नहीं तो कहते हैं पुराना कपड़ा भीगा हुआ पानी में भीग गया, उसको जोर से मत निचोड़ो, फट जाएगा। इसलिए कृष्ण को जाकर के हमारे विरह की बातें मत बतलाना, नहीं तो उनका हृदय कोमल है, वो फट जाएगा उनका। उद्धव जी देखते ही रहते, इसलिए उन्होंने जाकर के कृष्ण से ऐसे ही कहा। उद्धव जी डर से मारे चले गए, उद्धव जी चले गए, ब्रज में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? ओहो गोपियां कृष्ण के प्रेम की ये जोखम बजा रहे हैं और ये कितने दुख से बिल बिला रही हैं, कितना दुख, कहीं मुझे भी यह दुख न हो जाए। उस प्रेम की अंतिम सीमा को गृह को उन्होंने दुख मान लिया और यहाँ से भगे। बोले बहाना उसका कहते, मैं कृष्ण को लेकर के बहुत से जल्दी से लौटा, कृष्ण को लेकर के लौटे कभी, बस यही प्रार्थना थी। बंदे नंद बंदे श्री नाम पाद रेणु वापिसो, मैं गोपियों की चरणों की धूलि की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार से लौट गए कृष्ण। कुछ देने के बाद में लौटे तो नहीं, किंतु मथुरा छोड़ करके और दूर चले गए, हजारों मील द्वारका में चले गए। यहां तब कुर्बात हुआ। अब इसके बाद में उत्तरार्ध की कथा है आपको, उत्तरार्ध की रुक्मणी इत्यादि की बातें बतलाई होंगी, उनके कैसे विवाह इत्यादि हुए हैं, थोड़ा सा रुक्मणी का प्रसंग मैं और थोड़ा सा आप लोगों को बतला दूं। विवाह के बाद में उनको लड़के भी हो गए। एक दिन कृष्ण रुक्मणी जी के राजभवन में बैठी थी, राजभवन रुक्मणी जी आज दासियों के हाथ से पंखे ले लिया और चमर अपने हाथ से डोलाने लगे, सोने के कंकण बाजूबंद इत्यादि, कानों में कुंडल, अपूर्व सुंदरी, उसमें विश्व की सबसे सुंदरी किशोरी वो थी, सब गुणों से संपन्न। आज अपने हाथों से पंखे और ये सब डोला रहे। कृष्ण बैठे हुए, कृष्ण को कुछ सुझा, उन्होंने जरा गंभीर भाव से उनसे कहा, देखो रुक्मिणी जी, मैंने बहुत ही अन्याय किया, मुझे नहीं करना चाहिए। वो चुपचाप सुन रही है, ये बोलते रहे, मैंने अन्याय किया, जो तुम विश्व की सबसे सुंदरी लड़की हो और बड़े बड़े राजकुमार क्या, बड़े बड़े देवता लोग तुम्हें चाहते थे विवाह करना, यहाँ तक तुम्हारे पिताजी ने भी और मैया ने भी भाई ने भी बागदान दे दिया था, ये तुम्हारी शादी किस पाल से कराएंगे, और मैं बीच में पहुंच गया। तुम किसी मर्म होते कि फकड़ के चाल में चली गई। फकड़ कौन? नारद जी। नारद जी के मुख से कृष्ण के ये महिमा गुण सुनी थी, अरे तुम ऐसे किसी अकिंचन और ऐसे आदमियों के फेर में पड़ करके हमारे पति तुम आसक्त होकर के हमको पत्र दिया, मैं तुमको विवाह करने के लिए नहीं गया, इसलिए गया, मैं अपनी आन रखने के लिए गया जादू। तुम हमारे समय में शरणागत थी और तुमको चाहने वाले जराकंद इत्यादि और शिशुपाल, बड़े बड़े राजा दुर्योधन इत्यादि, भीष्म पितामह इत्यादि सभी तुम्हारी सेवा करने के लिए आए थे। जैसे शिशुपाल की शादी होगी, कोई भी व्यवस्था में गड़बड़ी हो तो हम लोग देखें, सभी लोग आए थे। मैं उनका मान मर्दन करने के लिए उस सभा में गया और सबको परास्त करके तुम्हें ले आए। मेरी बात यही इच्छा थी और तुमसे शादी करने में जुट गई। देखो मैं संसार में सबसे काला, कोई मेरे अंदर में गुण नहीं, और तुम विश्व की श्रेष्ठ गोरी और सुंदरी हो। तुमको चाहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा के सुंदर से सुंदर लोग लड़के हैं, और हमको संसार में जो असहाय हो जाते हैं, जिनको कोई नहीं देखता है, ऐसे निर्धन, ऐसे असहाय, सबसे उपेक्षित, बस वही केवल हमारा भजन करते हैं, हमको और लोग नहीं चाहते। देखो एक बात, हमारा पथ दुर्गम और अगम, हम लोग क्या चाहते हैं कोई कब किसी को पता नहीं। हमारे जो शरणागत होते हैं उनको पथ का अधिकारी बना देता हूं, उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं, और हम बड़ा निष्ठुर है, तुम सब प्रकार से हमारे अनुगत हो, किंतु तुमसे हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नहीं अब। मैं यही चाहता हूं वो तुमको चाहने वाले बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नरेश लोग, बड़े सुंदर सुशांत हैं, उनमें जिसको कहो उसी के पास मैं तुमको पहुंचा दूं, और तुम सुख और शांति से जीवन रहो। हमारे यहां तुमको सुख और शांति नहीं होगी, क्योंकि हमने वो गुण नहीं है। मैं तो राजा भी नहीं, हमारे राजा महाराज उग्रसेन हैं, इसे जैसा कहो वैसा ही तुमको कर दूं। अभी आज ही चल करके तुम्हारे तुमको पहुंचा दूं, तुम सुखी रहो। तुमको यहां पर दुखी देखते हुए हमारा मन दुखी हो जाता। रुक्मणी ने सुना, धीरे धीरे बेहोश होने लगे, हाथ का पंखा गिर गया, चमक गिर गया, और जैसे केले का वृक्ष आंधी में उखड़ करके एकदम गिर जाता है, ऐसे ही गिर गया। कृष्ण देखा जैसे ये तो गड़बड़ी हो गई, अरे हमने तो मजाक किया था गोपियों से, तो कितने प्रकार की मजाक करता था। तो गोपियां तो बड़ी मुस्कुरा करके या कुछ मान करके हमको उचित शिक्षा दे देती थी, तो उस समय मैं भी खुश हो जाता। अरे संसार में यही तो आराम है कि दिन भर का मनुष्य पुरुष काम करते हुए एकदम थक जाता है और शाम को आता है, तो पत्नी कभी बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके उसे कुछ बोल देती है, ठंडा पानी एक ग्लास दे देती है, कुछ रसोई बनाई हुई मीठी चीज दे देती है, सबसे अच्छी मीठी बोल देती है, पेटों को लेकर के गोदी में दे देती है। यही तो संसार का मधु है ना, और संसार में रखा क्या है। कृष्ण सोचा जी ये तो मरी इस हास्य परिहास को समझ नहीं सकी। चार भुजाएं उस समय उनकी थी, कभी कभी चतुर्भुज और कभी चतुर्भुज, चार भुजाओं से उनको उठाया लेकर के अंग में लगाया। कानों में बोले, प्रिय मैं सिर्फ तुमसे एक परिहास कर रहा था। परिवार में रहने पर दो खड़े पर थक थक करते हैं, तो कभी फ्रेंड से बोलना, कभी थोड़ा सा परस्पर में रुष्ट हो जाना, मान कर लेना परस्पर, यही तो संसार का ये थी। हम तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं बहुत थोड़ा सा तंग हो गया था काज करते करते, था सोचा ले जाएंगे कुछ ऐसी बात कहेंगे, रुक्मिणी भी रुष्ट हो जाएंगी, मुंह खुला लेंगी और जरा आंखों को टेढ़ी करके हमसे कुछ मान भरी कुछ बातें कहेंगी और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं क्या जानता था तो इतनी सब रुचि भी और इन चीजों को समझ नहीं सकती, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो परिहास किया। अरे मैं जब गोपियों से परिहास करता तो गोपियां कहती हमारे कुंज से निकल जाए धूप इत्यादि करके हमको निकालने के लिए कहती थी, और मैं वो सुन करके एकदम आनंद से विभोर हो जाता। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी सुकुमार और इतनी सरस्वती है, एक साधारण सी बात तुम नहीं समझ सकते। जब ऐसा कहा धीरे धीरे तो उनको कुछ होश हुआ, उठ करके धीरे 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 सचेत होकर के कृष्ण के चरणों में गिर गई। बोलिए देखिए आपने ये जो कहा जा, मैं तुम्हारे योग्य हैं, ये बात ठीक कहा। अरे ब्रह्मा इत्यादि सब ईश्वरों के ईश्वर, जब यही लोग आपका स्थान नहीं पाते हैं, हजार पाठ ना करके नहीं पाते, ये सब के आप आराध्य हो। ऐसे महापुरुष के लिए, भगवान के लिए मैं कैसे योग्य हो सकती हूँ? हमको चाहने वाले कौन है? जब त्रिगुण से बंधे हुए काम की पूर्ति करने के लिए कीड़े हैं, वो लोग हमको चाहते हैं। और आपको परमहंस नारद जी जैसे, सुखदेव गोस्वामी लोग जैसे, ये लोग भी ध्यान में आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाते, तो मेरी क्या विचार? इसे सच तो मैं जुटे, आप निर्गुण हैं, किन जगत के गुण हैं? सत रजतम, संसार इसी में मर रहा है, और आप इन त्रिगुण सहित अपरक्ष स्वरूप वाले सदा ब्रज में रहते, ऐसी लीला विलास करने वाले भला आपके योग्य हो सकती है? मैं इन गोपियों की चरण की धूलि हो सकती हूँ? प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता, छोड़ने से मैं बच नहीं सकता, इसलिए कृपा करें गोपियों के कुछ कुमकुम से रंगे हुए आपके जो चरण कमल है और उसमें तुलसी का मकरंद उसमें लगा हुआ है, बस इन चरणों की सुगंध को मैं सब समाप्त करता हूँ, उसकी सेवा करती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता। कृष्ण सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, फिर उनका घरेलू जीवन जैसा चलने लग गया, इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को हम लोगों को ग्रहण करना है। इसके बाद में हम चलते हैं, द्विदिश था नाम का राक्षस, राक्षस में बंदर था, वो रामचंद्र जी का कभी मंत्री था, द्विदिश उसका भाई, द्विदिश उसका भाई मंदर उसका भाई था, और वो भमासुर का बड़ा मित्र था, पीछे बन गया राम और रावण के युद्ध के समय में राम की सेवा की, किंतु लक्ष्मण जी से उसकी नजरें क्यों अनबन थी? लक्ष्मण जी की महिमा सुनकर के वो जलता था, और वो धीरे 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 भमासुर इत्यादि के मित्र बन करके उनका विरोधी और हो गया। कितने करोड़ वर्ष बच गए, बीत गए, तभी वो राम कृष्ण लीला के समय में भी था, भक्तों के प्रति दोहा आचरण करने से, भगवान की सेवा करने से भी भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, इसलिए विदित राम का भक्त होने से भी, अब जब कृष्ण ने होमासुर को मारा उसके मित्र को, तो उसको बड़ी पीड़ हो गई। कृष्ण जहां रहते थे महाराष्ट्र वो काठियावाड़ के भाग में, वहां पर उसी राज्य में वो भी रहता था, अब उनसे देश करने लगा, बगावत कर दी, क्रांति कर दी, और कृष्ण के भक्तों को उजाड़ उजाड़ करके नष्ट करने लगा, कभी कभी द्वारका को भी समुद्र के पानी में बहा देने की चेष्टा करता। एक दिन ये कौन पर रमण पर्वत किया क्या रविवर्तन पर्वत पर, वहीं पर बलदेव जी अपनी प्रियाओं को लेकर वहां पर उनके साथ में विहार कर रहे हैं, उसको देखकर के वही पर्दे पर चढ़ गया, गंदी गंदी हरकतें करने लगा और उनको चिढ़ाने लगा, और यहाँ तक कि उनका मधु का पात्र लेकर के छीन ले गया, और स्त्रियों को भी देख करके और उनको चिढ़ाने लगा। कभी कभी कोई भक्त भी साधारण यदि दूसरों के संग में आ जाए तो उसकी दुर्बुद्धि हो जाती है, इसे भक्तों का द्रोह नहीं करना चाहिए, भगवान से भी बढ़कर के भक्तों का सम्मान करना चाहिए। तो इसका यही बात दो संग से, साधु संग से लोग कहां भगवान की प्राप्ति कर जाते हैं, और कुसंग में रहने से उसकी भी विधि बिगड़ जाती है। बलदेव प्रभु जी ने साथ ही साथ में हल और मूसल से उसे हल से फेंक करके और मूसल से उसे मारा, उसका मस्तिष्क विदर्ण हो गया और उसकी दुर्गति। इसलिए सब समय साधु संग में रहने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे कि विचार अच्छे रहे और भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे, बहुत से लोग इसमें बिगड़ जाते हैं। इसलिए सब समय साधु संग की महिला है, साधु संग के द्वारा हनुमान जी बंदर होते हुए भी देखिए कैसे चले गए ऊपर, सुग्रीव जी भी बंदर थे, री जामोहन सब जमलादि इत्यादि नारद जी के संग से कैसे हो गए, प्रहलाद महाराज जी नारद के संग कहते हुए, जिनको जिनको भक्ति देखी जाती है वो सब साधुओं के संग का प्रभाव है। इसलिए सत्य संतों के संग का, जो लोग ये कहें जगत झूठा है, मैं ही ब्रह्म हूं, कि वो हम उन उनका झूठ कर कभी सपने में भी उनका दर्शन मत करें। शंकर जी को सात समय गुरु मानिए, पार्वती जी को गुरु मानिए। शंकर जी यहाँ तो कंसेश्वर है नहीं यहाँ रंगेश्वर, उसकी सेवा करने वाला कंस की क्या दुर्गति हुई, इस चीज को याद रखनी चाहिए। सांस्कृतिक उपासना उनकी नहीं होनी चाहिए, उनको गोपीश्वर के रूप में समझो और गुरु के रूप में समझ करके सम्मान दो, भगवान के रूप में नहीं। और नहीं तो हमारा सब कुछ भक्ति चौपट हो जाएगा। शंकर का दिया हुआ वहाँ पर जो प्रसाद और भक्त में जो होता है उसको मत धारण करो, नहीं तो संसार की वासना आ जाएगी। उनको प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पानी भी दे सकते, किंतु जगत गुरु के रूप में या उनको भगवान के रूप में मत, नहीं तो वो भी दुष्ट हो जाते हैं। इसे इस सबका विचार होना चाहिए। और नहीं तो मनमानी भक्ति करने से भक्ति नहीं होती है, इसे शास्त्र के अनुसार नहीं करते, इसे भक्तों का कर्म होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते किंतु अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान नाम का कीर्तन कराते हैं, भागवत भी पाठ करते हैं और कहते हैं कि वो हम, कि वो हम, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म। ऐसे लोगों को रावण की कोटि में समझा जाए, रावण कोटि के लोग उनका संग दूर से ही पड़ जाए। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं। मैं 7:30 बजने जा रहा हूँ, यदि कल होगा तो हम कृष्ण लीला चरित्र का रहस्य, कृष्ण का और उनके परिकरों का जो युद्ध इत्यादि देखा जाता है, कैसे उन्होंने आत्मगोपन किया, ये सब लीलाओं के संबंध में कल कुछ बोलने की चर्चा। आज ही प्रमाण गौर प्रमाण कल बतला दिया, कल सवेरे भगवान की बड़ी कृपा होती है, इसलिए आप अभी प्रार्थना ये करेगा कि हमारी बालकों की टोली में कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते हुए जरा आए तो देखो तो। Yeah.
जय श्री गुरु गोविंद गंधार विज्ञा के धारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की अंगिष्ट पाद अपनी ब्रज गचार्य स्वामी सुमन भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय अंगिष्ट पाद अष्टभुज सुमन भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय निद्रिला विष्णु पाद शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जगत गुरु निद्रिला विष्णु पाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय जय शिल गौर के श्रद्धा जो की महाराज की जय शिल सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय वैष्णव सर्व श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की जय तिरुपान गुरुवर्ग की जय अनंत वैष्णव वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय सचिनंदन गौर हरि की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
श्रीमद् भागवत कथा आठ दिनों के बाद में आज समाप्त हुई। आज अक्षय तृतीया का विशेष दिन है। आज जो भी पारलौकिक कार्य किए जाएंगे वो कार्य अक्षय होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। यदि आज के दिन कोई दान पुण्य भी करे तो अक्षय होता है, किंतु कितने दिन के लिए? देवताओं के आयु तक के लिए। एक मनु का जितना पीरियड है उतने दिनों के लिए वो अक्षय होगा, फिर वहां से गिर आएगा। किंतु उस दिन यदि कोई आत्मा की कथा सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान की लीला कथाएं सुने तो वो फल कैसा होगा? अक्षय होगा, कभी भी समाप्त नहीं होने। और जो लोग आज के दिन में श्रीमद् भागवत का अंतिम विषय, भागवत का प्रतिपाद्य विषय माने उसका सार ये है, गोप गोपियों ने जिस भावना से कृष्ण की सेवा की और कृष्ण ने उनकी सेवा को ग्रहण किया, यही भागवत का सार है। ब्रज के सखाओं ने उनकी कैसे सेवा की, यशोदा मैया ने कैसे सेवा की उस परब्रह्म को अपना बेटा मानकर, यहाँ तक कि घरों में चोरी कर रहा था उसके कान उमेट दिए, पोखर के साथ में उनको बांध दिया और उस बंदर को खोल नहीं सके वो, उनका कोई सखा तक नहीं खोल सका, उसको उन्होंने ग्रहण किया। इसके बसी कुछ हो जाए, इससे भी यदि गोपियों ने अपने प्रेम से ऐसे बांध दिया कि उन गोपियों के साथ में रास करना पड़ा, गोपियां थक जाने पर कहते हैं कृष्ण वो जो विश्व ब्रह्मांड के अधिनायकों के भी अधिनायक है, पर ब्रह्म है, वो कहते आप थक गई, आपके चरण दबा दूं, सेवा कर दूं। उनके पैरों के महावर यदि निकल जाते हैं तो उनको फिर से रंग देते हैं और कहते हैं कि देवियों मैं आपका ऋणी हूं, आपके प्रेम का बदला मैं नहीं दे सकता, एक दो जन्म में नहीं करोड़ों करोड़ों की आयु में भी आपके इस प्रेम का जो हमारे लिए तुम लोगों ने घर बार सब छोड़ दिया, अपने पति का स्नेह भी छोड़ दिया,
भिखारिन बन गई, पति भिखारी।
मैं इस प्रेम को कैसे भूल सकता हूँ जो लोग हमारे लिए घर बार छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र परिवार का प्रत्याग कर देते हैं, लोग सम्मान को भी प्रत्याग करते हैं, उसके लिए भला मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूँ? कदापि नहीं छोड़। मैं पहले उनका सर्वस्व हरण कर लेता हूँ, पुत्र परिवार धन संपत्ति मान इज्जत सब उनका हरण करके पद का भिखारी बना देता हूँ, तभी हमको नहीं जल्दी छोड़ते हैं। मैं अपना सर्वस्व उनको दे देता हूँ, उनको कभी भी नहीं छोड़। गोपियाँ ऐसे भक्तों में, ऐसे कृष्ण की क्रियाओं में सबसे श्रेष्ठ थी। उनकी जो कथा सुनता है आज के दिन, उसका अक्षय फल होकर के गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। आज के दिन जो लोग नंदगांव से बरसाना पहुंचे होंगे, श्रीमती जी का दर्शन किया होगा, उनकी कथाएं सुने होंगे, और फिर वहां से गोवर्धन होते हुए उसी रास्ते से फिर यहां आए कृष्ण की जन्मभूमि, और फिर यहां से जाएंगे वृंदावन, और वहां पर राधा गोविंद गोपीनाथ और बिहारी जी के और राधा जी के चरणों को आप लोग दर्शन। बीच में आप लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा, गोवर्धन में जा करके भी उतरे नहीं, बात ठीक है, किंतु यहाँ का कीर्तन का माहौल आप लोगों ने देखा, कुछ हरि कथा सुन रही हैं, और कुछ वृंदावन में जब जाएंगी बिहारी जी के चरण देखेंगे, लाखों लोग थक का मुक्की करके जा नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर जब आप लोग जाएंगे और अक्षय तीज के दिन में आप लोग समझे कि हमारा जीवन सफल हो गया और रामचंद्र जी ने हमारे के साथ में ये अन्याय नहीं किया, गोवर्धन में नहीं किया, है ना? यदि कुछ गलती भी हो गए तो इसलिए इन्होंने किया, आप लोगों को खाने पीने में कोई असुविधा ना हो, दोपहर में आराम करेंगे, अब प्रेम से यहाँ की कथा सुनाएंगे, और फिर वृंदावन में जा करके वहाँ पर रात में निवास करेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, पास ही में वहाँ पर सेवा कुंज है जहाँ पर कृष्ण उनके चरणों को पलोट रहे हैं, जहाँ पर उनका राज हुआ था, जहाँ पर दामोदर जी का मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है।